सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं।
जमाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, ये तन मन भी अपना भुलाए हुए हैं, भुलाए हुए हैं।
ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के।
ओम शांति। प्यारे बाबा की मुरलियां साकार और अव्यक्त दोनों हम सुनते हैं। साकार मुरली की अपनी विशेषता है और अव्यक्त मुरली की अपनी विशेषता है। जब अव्यक्त मुरली शुरू होती है तो बाबा बच्चों को पहली या दूसरी लाइन में ही कोई ना कोई स्वमान याद करा देते हैं। जैसे कई बार बाबा कहते हैं कि आज बाप दादा अपनी संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं, कभी बाप दादा कहते हैं आज भाग्य विधाता अपने पद्मा पद्म भाग्यशाली बच्चों को देख रहे हैं, कभी बाबा कहते हैं बाप दादा अपने खुश नसीब बच्चों को देख रहे हैं। तो कितने स्वमान बाबा हमको याद कराते हैं। और इस विद्यालय की यही विशेषता है। दुनिया में सत्संग और भी हैं, लेकिन कोई गुरु महात्मा अपने चेलों को इतने स्वमान नहीं देता, इतनी ऊंची दृष्टि से नहीं देखता। और बाबा कदम कदम पर बच्चों को कितनी ऊंची ऊंची बातें सुनाता है। और वो बातें जब हम सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, उनका स्वरूप बनते हैं, तो जीवन बदलता जाता है। तो प्रश्न ये है कि स्वमान में और स्वाभिमान में क्या अंतर है। लौकिक दुनिया में लोग स्वमान शब्द को नहीं जानते, वो लोग स्वाभिमान शब्द यूज करते हैं। और बाबा हम बच्चों को स्वमान देते हैं। तो वास्तव में स्वाभिमान शब्द लौकिक शब्द है। जैसे आपने सुना होगा किसी को अपनी जाति का स्वाभिमान होता है। जैसे मान लो कोई राजपूत जाति का है तो उसको स्वाभिमान होगा, भाई हम तो आजादी के लिए लड़ने वाले हैं, या हमारे कुल की परंपरा बहुत ऊंची है, हमने बहुत बलिदान किए हैं, बहुत त्याग किए हैं। तो कुल या जाति के आधार पर जो नशा होता है उसको स्वाभिमान कहते हैं। या किसी को देश के नाम पे भी होता है, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की महिमा बहुत अपार है, मैं भारतीय हूँ, हमारा देश देवताओं का देश है, हमारे देश में भी बहुत महान लोग हुए हैं, इसको भी स्वाभिमान कहेंगे, देश का स्वाभिमान। लेकिन ये जो स्वाभिमान है इनकी हदें होती हैं। अगर किसी को राजपूत जाति का अभिमान स्वाभिमान है तो किसी दूसरे को फिर अपनी दूसरी जाति का स्वाभिमान होगा। अगर किसी को भारत का होने का स्वाभिमान है तो किसी को अपना जापानी होने का स्वाभिमान होगा। तो इसमें भी हदें हैं और इस स्वाभिमान के कारण भी कई बार टक्कर होती है। लेकिन बाबा ने जो स्वमान दिए उसमें कोई हद नहीं है। क्योंकि उसका कनेक्शन देह से या देह की पहचान से है ही नहीं। स्वमान का कनेक्शन तो आत्मा से है। आत्मा का पूरे सृष्टि चक्र में कितना महान पार्ट रहा है उससे, और आत्माएं तो सब भारतीय सब नहीं है, जैपनीज सब नहीं है, राजपूत या वैश्य सब नहीं है, लेकिन आत्मा तो सब है। तो आत्मा का जो मान है, आत्मा का जो सर्वोच्च स्वरूप है, उसको कहते हैं स्वमान। और जब हम इसमें टिकते हैं तो इसमें अभिमान का नाम मात्र भी नहीं होता है। एक और स्वमान से मिलता जुलता शब्द है अभिमान और अपमान। अभिमान का अर्थ होता है हम जो भी कुछ हैं, असल में हम जो हैं, उससे अपने आप को ऊंचा आंकना, उसको कहते हैं अभिमान। और अपमान, हम जो हैं उससे अपने आप को नीचे आंकना, उसको कहते हैं अपमान। तो दुनिया में दो ही तरह के लोग मिलेंगे, या तो वो जिनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है माना अभिमान है, और या वो जिनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है माना अपमान की भावना है, हीन भावना है। बाबा इन दोनों से निकाल करके हमको स्वमान में टिकाते हैं। ये स्वमान की जो स्थिति है, ये आत्मविश्वास की, आत्मस्वरूप की स्थिति है। इसमें ना अभिमान है और ना अपमान है। रोज के जीवन में बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे स्वमान में रहो, स्लोगन में आता है, स्वमान में रहेंगे तो निर्माण रहेंगे। माना जो जितना ज्यादा स्वमान में है वो उतना ही निर्माण रहता है, नम्रचित रहता है। जैसे बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप होकर के रहो, तो इसका अर्थ क्या है, किस किस स्मृति स्वरूप होके रहें, किसी ना किसी स्वमान के स्मृति स्वरूप होके रहें। बाबा ने हमारे बारे में जो बताया है, जिसका हमको पहले ज्ञान नहीं था। ओम शांति। तो हम बात कर रहे थे, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे स्मृति स्वरूप होकर के रहो, तो स्मृति स्वरूप का अर्थ क्या है? किसकी स्मृति में रहें? बाबा की स्मृति में तो रहें, लेकिन खुद की भी तो कौन सी स्मृति में रहें? माना स्वमान में रहें, जो बाबा ने हमें ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए हैं, जैसे मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, या मैं रूहे गुलाब हूँ, या मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, या मैं सबकी दुआओं की पात्र आत्मा हूँ, सदा संतुष्ट आत्मा हूँ, सबको दुआएं देने वाली हूँ। तो ये जो स्वमान है, जब हम इनकी स्मृति में रहती हैं, तब बाबा की भी स्मृति टिकती है। अगर हमको अपने स्वमान की स्मृति है नहीं और हम बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, तो ये तो भक्तों की तरह से हो गया, फिर याद टिकती नहीं है। थोड़ी देर याद आएगी, उसके बाद फिर बुद्धि हिल जाएगी, क्योंकि अपना स्वरूप स्थिर नहीं है, वो हिल रहा है। तो जब अपना स्वरूप स्थिर नहीं है, तो बाबा की स्मृति कहाँ टिके? इसलिए बाबा कहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते केवल एक स्वमान में नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न स्वमान, जैसा समय वैसा स्वमान, जैसी परिस्थिति वैसा स्वमान। और जब हम उसको धारण करेंगे तो विजयी बनेंगे। स्वमान है ही विजयी बनाने के लिए। जैसे इतिहास की एक घटना हम लोग आमतौर पे सुनाते हैं, बहुत प्रचलित सी बात है, कि एक बार एक राजपूत राजा अकबर राजा के दरबार में गया, तो वहाँ एक कॉम्पिटिशन थी पत्थर तोड़ने की, कोई नहीं तोड़ सका, तो वो दुबला पतला राजपूत राजा आगे बढ़ा, तो सारे लोग हंसने लगे कि भाई ये क्या पत्थर को तोड़ेगा, जब इतने अच्छे राजा नहीं तोड़ सके। तो उसके साथ में एक व्यक्ति भी आगे बढ़ा, तो उसको कहा गया, भाई एक को ही पत्थर तोड़ना है, थोड़ा एक को ही उठाना है, ये दूसरा साथ क्यों चल रहा है? तो उसने कहा, जी थोड़े को हाथ नहीं लगाएगा, ये मेरे पास खड़ा रहेगा। तो जब उसने हथौड़ा उठाया, तो वो जो पास में खड़ा था, उसको कहते हैं चारण और भाट। चारण और भाट लोग क्या करते थे, इन लोगों के पूर्वजों की महानता के वीरता के गीत गाते थे। तो उसने गीत गाना शुरू कर दिया, तुम स्कूल के हो, तुम्हारे दादा ने इतनी वीरता दिखाई, तुम्हारे पिता कभी युद्ध में नहीं आ रहे, तुम्हारे कुल का गौरव ऐसा है, तुम तो सदा विजयी रहे हो, तुमने तो कभी आज तक पीठ नहीं दिखाई, ऐसे ऐसे गान गाना शुरू किया। तो उसकी भुजाओं में ताकत आ गई और उसने, दुबले पतले राजा ने एक ही वार से उस पत्थर को तोड़ दिया। अब शक्ति हाथों में तो नहीं थी, लेकिन जब मन में शक्ति आई तो हाथों में भी शक्ति आ गई। तो शक्ति का केंद्र कौन सा है? हमारा मन और हमारे मन के विचार। अगर हमारे विचारों में शक्ति है, विचार पॉजिटिव हैं, विचार दृढ़ हैं, विचार एकाग्र हैं, विचार ऊंचे हैं, दूसरों के बारे में बाद में, पहले अपने बारे में, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं सर्व का उद्धार करने वाली आत्मा हूँ, सर्व को मार्ग दिखाने वाली आत्मा हूँ, कितनी सारी ऊंची ऊंची बातें हैं। तो जब वो स्मृति में रहती हैं, तो हमारे कर्मों में शक्ति आती है, दृष्टि शक्तिशाली बनती है, हमारे बोल शक्तिशाली निकलते हैं, हमारा कर्म शक्तिशाली होता है। इसलिए कोई ना कोई स्वमान बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। जैसे बाबा ने एक स्वमान हमको दिया है कि आप बच्चे त्रिकालदर्शी हो, एक कालदर्शी, दो कालदर्शी और त्रिकालदर्शी। तो इसका क्या अर्थ है? और हम त्रिकालदर्शी बनकर के कर्म करेंगे तो उसका क्या फायदा है? अब एक कालदर्शी किसको कहते हैं? एक कालदर्शी उसको कहते हैं जो केवल वर्तमान को देखता है। और वर्तमान कितनी देर का होता है? सेकंड का भी नहीं होता, क्योंकि जो अभी से पहले गुजर गया वो भूतकाल बन गया, और जो आगे आएगा वो भविष्य काल है। तो वर्तमान काल तो बहुत ही छोटा क्षण होता है। अब जो केवल वर्तमान को देखता है, वो केवल वर्तमान की परिस्थिति से निकलने की कोशिश करता है, भूत और भविष्य के बारे में उसको चिंता नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्रोध कर लिया, विकर्म हो गया, अब उसका एक काल दर्शी है तो बस उसका ये प्रयास रहेगा भाई किसी को पता ना पड़े, किसी भी तरह से मेरी ये बात दब जाए, बस बस अभी अभी मेरे को बचा लो, मेरे से गलती हो गई, बस एक बार मेरे को बचा लो, बस वर्तमान में एक बार मेरी समस्या का हल हो जाए, केवल वर्तमान में, केवल इस समय में बच जाऊं, बस उसका यही पुरुषार्थ, क्योंकि केवल वर्तमान को देख रहा है वो। लेकिन जो दो कालदर्शी है वो भविष्य को भी देखता है, वो सोचेगा कि भी चलो मैंने अभी क्रोध कर लिया, पर ये क्रोध मेरे को क्यों आया, कहीं ऐसा ना हो कि कल फिर आ जाए, इसलिए मैं आज पुरुषार्थ करूं, कारण ढूंढूं, कारणों का निवारण करूं, उस परिस्थिति में दोबारा ना फंसूं जिस परिस्थिति में मेरे को क्रोध आता है। तो वो आज का भी सोचता है और आने वाले कल का भी सोचता है, भी कल मेरे से ये बात रिपीट नहीं होनी चाहिए, पुरुषार्थ करता है। और जो त्रिकालदर्शी हैं, वो तीनों कालों का सोचता है, तो तीनों कालों में भूतकाल भी आ गया। तो जो त्रिकालदर्शी है वो भूतकाल में मैं कौन था उसकी स्मृति में रहता है, अरे भूतकाल में तो मैं देवता था और मैं कर्मेंद्रिय जीत, विकार जीत, प्रकृति जीत था, विकार तो मेरे दास थे, मेरे सेवक थे, और विष्णु का जो चित्र है वो मेरा ही तो चित्र है, पांचों नाग उसके ऊपर छत्र छाया बन के खड़े हुए हैं, तो ये विकार तो मेरी छत्र छाया है, ये मुझे नुकसान थोड़े पहुंचा सकती, मैं काम जीत, क्रोध जीत, लोभ जीत, मोह जीत। अब चूंकि वो त्रिकालदर्शी है तो उसको अपना आदि अनादि स्वरूप सदा स्मृति में, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, क्रोध आएगा ही नहीं। तो एक कालदर्शी बार बार बुराई के अधीन होगा, दो कालदर्शी पुरुषार्थ करके बुराई से बचने का प्रयास करेगा, और त्रिकालदर्शी के नजदीक ही बुराई नहीं आएगी, पहले से ही नमस्कार करके चली जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे हमेशा ये याद रखो कि मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूं, कोई भी कर्म करो तो इस स्थिति में टिक करके करो। जब हमको ये स्मृति है कि मैं आदि अनादि ऐसी आत्मा हूं, तो हमारे लिए तो कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि हमने तो बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध किए, ये स्वमान जागृत होता है ना। इसी तरह से जैसे बाबा कहती हैं, आप बच्चे सिद्धि स्वरूप है, तो सिद्धि स्वरूप का मतलब क्या है, दुनिया में लोग बहुत तपस्या करते हैं तब जाकर के सिद्धि स्वरूप बनते हैं, भाई उसने बहुत तपस्या की, फलानी गुफा में कुटिया में बैठ के अब उसका हर बोल सिद्ध हो रहा है, वो जो बोलेगा ना सिद्ध हो जाएगा, ऐसे कहते हैं, संकल्प करेगा ना वो सिद्ध हो जाएगा। लोग उससे कुछ कामना भी करते हैं और लोग उससे भय भी खाते हैं, लौकिक दुनिया में जो सिद्धि वाले लोग होते हैं ना उनसे। अब हम बाबा के बच्चे सिद्धि स्वरूप है, माना हमारा मन वचन कर्म सिद्ध हुआ ही पड़ा है, अगर हमको ये स्वमान याद है तो क्या होगा, नशा रहेगा, होगा कि नहीं होगा ये ख्याल नहीं आएगा, हुआ ही पड़ा है, बाबा का वरदान है, तो अपने में संशय नहीं रहेगा। अपने किसी कर्म के परिणाम में हमको निश्चिंतता रहेगी, हुआ ही पड़ा है, बाबा ने मुझे सिद्धि स्वरूप का वरदान दिया हुआ है, अगर उसकी स्मृति होगी तो सिद्धि मिलेगी, स्मृति नहीं होगी तो सिद्धि नहीं मिलेगी। जैसे रामायण में वो प्रसंग आता है ना कि जब हनुमान छोटा था तो ये गुरुकुल में पढ़ता था, लेकिन वो बलवान बहुत था, तो पढ़ते पढ़ते बच्चों के साथ शरारतें बहुत करता था, किसी को अपनी पूंछ से बांध देता था, किसी को बच्चे होते हैं ना शरारती, और किसी को बैठे बैठे ऐसे थोड़ा कुछ हिला देता था। तो एक बार एक गुरु को उस थोड़ा ख्याल आया, तो गुरु ने कहा, हनुमान तुम्हारे में शक्ति तो बहुत है लेकिन तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि जब शक्ति की जरूरत पड़ेगी ना तब तुम इस शक्ति को भूल जाओगे, फिर जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तब तुमको अपनी शक्ति याद आएगी। तो दिखाते हैं ना, जब सीता को ढूंढने की बात आई तो हनुमान को तो ख्याल ही नहीं आया कि मैं कर सकता हूँ। फिर वो जामवंत दिखाते हैं उसका साथी, उसने बार बार उसको कहा कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुमने ये भी काम किया, ये भी काम किया। तो उसको याद आ गया, और याद आ गया तो उसने वो अपने हाथ में ले ली जिम्मेवारी, और उसके बाद उसमें सफल भी हुआ। तो हम आत्माएं सिद्धि स्वरूप थी लेकिन माया ने हमको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम अपनी सिद्धियों को भूल जाओगे। दो युगों तक माया का श्राप चलता रहा, हम अपनी सब योग्यताएं सब गुण भूल गए। और अब जब संगम युग आया तो जो माया से भी बलवान है, क्योंकि माया को कौन जीते, माया के श्राप को कौन जीते, माया हावी हो गई थी सब पर, लेकिन बाबा तो माया से बलवान है। तो बाबा ने माया के श्राप को काट दिया और हमको फिर से याद दिलाया कि आप वही बच्चे हैं जो कल्प पहले भी बने थे, जिनकी यादगारें मंदिरों में हैं। अरे आप बच्चों की तो इतनी कहानियां बनी हुई हैं, सारे शास्त्र तो आपके चरित्रों से और कर्तव्यों से भरे पड़े हैं। तो आप वही हैं और आपको फिर वही स्वरूप प्राप्त करना है। तो जैसे ही बाबा ने ये स्मृति दिलाई तो हम स्मृति स्वरूप बन गए, लेकिन माया अभी भी ताक में रहती है। जैसे आज बाबा ने सुबह मुरली में कहा था ना कि माया को ईर्ष्या होती है, जब हम बाबा से हमारी लगन लगती है तो माया को ईर्ष्या होती है। तो दो युगों तक जिसके श्राप के नीचे आत्माएं रही और अब वो उस श्राप से छूटकर जब बाबा की तरफ जाती हैं तो उसको क्या लगता है, अरे ये मेरे चंगुल से निकल के जा रही हैं, ये मेरे अधीन नहीं रहेंगे, अब ये मेरे पे राज करेंगे, दो युगों तक तो मैंने इन पे राज किया। तो फिर वो क्या करती है, भुलाने की कोशिश करती। तो बच्चे जब बाबा के प्रभाव में होते हैं तो स्वमान याद आ जाता है, और जब माया के प्रभाव में आते हैं तो वो पुराना श्राप फिर काम करने लग जाता है, फिर भूल जाते। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि माया के प्रभाव से निकल करके बाबा के प्रभाव में रहना। जैसे बाबा ने पिछली मुरली में कहा कि चेक करो, एक राज्य है या दो राज्य हैं, एक राज्य माना केवल एक बाबा की श्रीमत का राज्य है, या बीच बीच में माया भी अपना राज्य कर लेती है, माया भी राज्य चलाती। सतयुग में एक राज्य होगा एक राजा का, तो संगम में भी तो एक ही राज्य होना चाहिए, एक ही राजा होना चाहिए, एक ही मत पे हमको चलना चाहिए। तो स्वमान की विस्मृति ना हो ये हमको चेक करना। जैसे ही विस्मृति होगी हमारे अंदर शक्ति ही नहीं रहेगी। स्वमान की ही विस्मृति हो गई तो शक्ति कहां से रहेगी? शक्ति का आधार तो स्मृति है। एक बहुत सीनियर भाई ने एक बार अपना एक रियल घटना एक बार सुनाई थी। जब वो नया नया ज्ञान में आया था और सेंटर पे गया था तो बहन जी ने उसको कहा कि सारा दिन याद रखना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब आप ऐसी स्मृति रखेंगे ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ऐसे स्मृति रखते रखते ही देवता बन जाएंगे। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ और इसका देवता बनने से क्या कनेक्शन। तो उसने सोचा चलो बहन जी ने कहा है तो मैं मान लेता हूँ। तो उस दिन उसको रेलवे स्टेशन पे किसी काम से जाना था, भीड़ थी काफी, और एक कुली सिर पे बहुत सारा सामान, ये लोग तो बेचारे बहुत सामान उठाती है ना, लेके जा रहा था। तो भीड़ थी, सामान ज्यादा था, उसका बैलेंस बिगड़ गया और ऊपर में जो सबसे टॉप वाली चीज थी वो गिरी, फिर बाकी भी सामान गिर गया। तो ये जो अपना भाई जा रहा था ना, इस भाई के पांव की उंगली को चोट लगी, उसका सामान जब गिरा तो उंगली में से खून निकला, चोट भी खाई खून भी निकला। और कुली फिर कहता है, सामान गिर गया ना, तुम ध्यान से देख के नहीं चल सकते थे, तुम्हारे कारण मैं गिरा, ऐसे बोला होगा, इन लोगों को तो बोलने का भी रहता है। अब देखने वाले बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा भाई ये तो अपने रास्ते ठीक ठाक जा रहा था, इसका तो दोष ही नहीं है, बैलेंस तो तुम्हारा बिगड़ा, एक तो तुम्हारा बैलेंस बिगड़ा, फिर सामान गिरा, फिर इसको चोट लगी और ऊपर से तुम इसको ही कुछ का कुछ बोल रही हो। लेकिन उसको सुबह सुबह कौन सा स्वमान मिला था, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, वो अंदर ही अंदर उसको रटे जा रहा था, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा। तो लोग उसका फेवर कर रहे थे और फिर लोगों ने क्या किया, कुली को घेर लिया, बोला एक तो तुमने इसको मारा और ऊपर से तुम इसको भला बुरा भी कह रही हो। तो लोगों ने कुली को घेर के उसको, जैसे गुस्से में आते हैं ना लोग, तो जैसे भाई इसको मारेंगे अभी, तो अपने भाई ने कहा रहने दो रहने दो, बेचारा गरीब आदमी है, छोड़ दो, इसका भी दोष नहीं है, इतना सारा सामान सिर पे था तो बेचारे का बैलेंस बिगड़ गया, कोई बात नहीं है, इसको कुछ मत कहो। तो वो कुली भी हैरान हो गया, लोग भी हैरान हो गए। तो वो आया और आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता बाबूजी आप तो सचमुच देवता आदमी हैं, ऐसे कह के ना वो चला गया। तो इस भाई ने सोचा कि देखो बहन जी ने कहा था कि तुम शांत स्वरूप ये चिंतन करोगे ना तो तुम देवता बन जाओगे, तो चलो मैं देवता बनूंगा, वो तो बाद में, लेकिन कम से कम आज से मुझे किसी ने देवता कहना शुरू तो कर दिया, शुरुआत तो हो गई ना, तो शुरुआत होगी तो एक दिन बन भी जाऊंगा। तो उसको पक्का निश्चय हो गया कि सचमुच ये जो स्मृति है, ये स्मृति ही धीरे धीरे हमें अपनी मंजिल पर पहुंचाएगी, हमको देवता बनाएगी। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक बहन ने अपना अनुभव सुनाया, जब साकार बाबा थे तब वो आबू में पढ़ती थी, छोटी थी 14-15 साल की। तो जब पहली बार बाबा से मिली तो बाबा तो बहुत मीठी दृष्टि से हर बच्चे को देखता था ना, तो उसको कहा बहुत मीठी बच्ची है, बस इतना ही बोला। तो उसने कहा जब बाबा ने मुझे ये बोला ना बहुत मीठी बच्ची है, तो मेरे को अंदर में ये बात स्मृति में जम गई कि मैं बहुत मीठी हूं। अब मैं कभी गुस्सा करना भी चाहूं ना तो मैं कर नहीं सकती हूँ, मेरे को तुरंत कानों में आवाज गूंजती है, मैं बहुत मीठी बच्ची हूँ, बाबा ने मुझे कहा था मैं बहुत मीठी बच्ची हूँ, मेरे को बार बार आता है, तो मैं चाह करके भी गुस्सा नहीं कर पाती, बाबा ने मेरे को बांध दिया। अब एक शब्द में कितनी ताकत है, लोग कहते हैं किसी का क्रोध छुड़ाना तो बहुत मुश्किल है, किसी को मीठा बनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा के एक महावाक्य ने जीवन भर के लिए उसको मीठा बना दिया। फिर उसने कहा मैं दूसरी बार बाबा से मिली ना तो बाबा ने मुझे कहा कि ये अन्य कन्याओं जैसी कन्या नहीं है, तो इससे भी मेरे को बड़ा नशा चढ़ा, देखो बाबा ने मेरे को दुनिया से अलग बताया है, मैं दुनिया से न्यारी हूँ, मेरे को दुनिया के लोगों जैसे काम नहीं करने हैं, अलग काम करनी है, न्यारे काम करनी है, क्योंकि बाबा ने मुझे कहा है कि ये सब ये औरों से न्यारी है। तो बोला इस स्वमान ने भी मुझे बहुत बुराइयों से बचाया, जब जब ये स्मृति में आता है तब तब मुझे लगता है मेरे को कोई नया अलौकिक यूनिक काम करना है। तो चलो ये तो बाबा ने साकार में पालना दी, लेकिन अव्यक्त में बाबा कितनी पालना दे रही है। देखो बाबा जब हमें हमारे जन्मों की कहानी सुनाते हैं ना, तो बाबा शुरू करते हैं परम धाम से, बच्चे याद करो जब आप परम धाम में थे, तो ऐसे तो और धर्म की आत्माएं भी हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन वो सब नीचे बैठेंगे और तुम सारे बच्चे बाबा के बिल्कुल करीब बैठोगे। झाड़ में देखा ना, देवी देवता धर्म की आत्माएं ब्रह्मा विष्णु शंकर के बिल्कुल नजदीक, और बाबा ने कहा तुम्हारी चमक भी उन आत्माओं से ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा चमक बाबा, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्मा, और उसके बाद हम सब बच्चे ज्यादा शाइनिंग स्टार, और उसके बाद नीचे दिखाई है लास्ट में, धर्म पिता भी हमारे से बाद में दिखाया है। फिर बाबा कहते हैं सतयुग में याद करो आप कितने यूनिक थे, जब आप सतयुग में थे तो आपके सिर पे दो ताज थे, किसी अन्य धर्म की आत्मा को पूरे कल्प में दो ताज मिलते ही नहीं, केवल आपको ही मिलते हैं, और सतो प्रधान प्रकृति केवल आपको मिलती है। बाबा ने एक बार कहा था कि मकान में जब पहले दिन रहने के लिए जाते हैं तो उसका मजा कुछ और है, और जब वो मकान 10 दिन 20 दिन भी पुराना हो जाता है ना, तो थोड़ा फर्क तो पड़ता है ना। तो नई सृष्टि, स्तो प्रधान सृष्टि किसको मिलेगी? हम बच्चों को मिलेगी, और बाकी सारे लोगों को सृष्टि कब मिलेगी? जब वो आधी पुरानी हो चुकी होगी, आधे पुराने मकान में वो लोग आएंगे, और हम सब सतो प्रधान प्रकृति, स्तो प्रधान आत्माएं, सब कुछ स्तो प्रधान होगा, तब उनके बीच में पार्ट प्ले करने आएंगे, तो यूनिक हो गए ना, हमारे बराबर कोई नहीं। कितनी करोड़ों आत्माएं हैं, उनमें से हम गिनती की आत्माओं को ये भाग्य मिलेगा। उसके बाद बाबा कहता है द्वापर युग में, मध्य काल में आओ। जब आप मध्य काल में आए तो आपकी पूजा शुरू हुई, आप जैसी पूजा किसी भी धर्म पिता की, किसी भी महात्मा की, किसी की भी नहीं होती है। उन लोगों का तो क्या करती है, बाबा कहते हैं ना, बुत बना करके चौराहे पे खड़ा कर देते, ऊपर कोई शेड नहीं, मिट्टी आए, धूल आए, पंछी गंदा करे, लेकिन आपका बुत ऐसे कभी नहीं मिलेगा। मंदिर में कितना सुंदर मंदिर बना करके, कितने कोई ग्लास के बॉक्स होंगे, कुछ कुछ होगा, फिर कितने सारे जेवर पहनाएंगे, फिर कितनी विधिवत पूजा करेंगे, जो पंडित होगा पुजारी होगा वो भी स्नान करके, फिर अपने चप्पल उतार करके लोगों को भी कहेंगे नहा करके दर्शन करने आना, साफ स्वच्छ होके भोग भी बनेगा, तो मुंह पे कपड़ा बांध करके सात्विक भोग बनेगा, और चढ़ावा भी क्या जोरदार चढ़ेगा, लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ ही चढ़ाते हैं देवी देवताओं पे। अभी कलयुग में कम हो गया होगा, पहले तो बहुत चढ़ता था, सोने का छत्र होगा, मंदिर के ऊपर की भी जो होती है वो भी कई बार सोने की होती, भारत में तो बहुत सोने के मंदिर बनती। तो बाबा ने कहा कितनी विधिवत पूजा, और उसमें भी कई मंदिरों में तो आपने देखा होगा 8 दर्शन होते हैं एक देवता के, जैसे यहाँ पे है ना श्रीनाथ द्वारा, तो उसमें श्री कृष्ण के 8 दर्शन होते हैं, हर एक दर्शन का पोज अलग होता है। मान लो अभी उठने का पोज है, तो अभी वो सो के उठा होगा तो वही पोज दिखाएंगे, उसके भक्त दर्शन करेंगे, उसके बाद जैसे श्रृंगार हो रहा है वो वाला पोज दिखाएंगे, तो पर्दा हटेगा और उसका श्रृंगार हो रहा है वो दिखाएंगे, उसके बाद जैसे वो भोजन कर रहा है मान लो वो वाला पोज है, तो फिर तीसरे दर्शन में वो वाला दिखाएंगे, उसके बाद समझो वो खेल रहा है तो खेलते हुए का पर्दा उठेगा और वो खेलते हुए का पोज दिखाएंगे, तो 8 दर्शन माना 8 अलग अलग पोज होंगे। बाबा ने कहा ना आपके हर कर्म का यादगार बनता है, हर कर्म चरित्र के रूप में पूजा जाता है, सोना एक कर्म है लेकिन भक्तों के लिए वो दर्शनीय चीज है, खेलना एक कर्म है लेकिन भक्तों के लिए वो दर्शनीय चीज बन गई, तो क्या किसी साधु संत महात्मा धर्म पिता का कर्म इस तरह से दर्शनीय मुहूर्त बनता है, क्या इस तरह से भक्त उसके दर्शन करते हैं? नहीं। और फिर बाबा कहते हैं देखो संगम युग में आओ, बाकी कोई भी धर्म की आत्मा डायरेक्ट भगवान से नहीं मिलती है, कोई भी आत्मा इस तरह से भगवान के सामने बैठे देखे, उनकी मुरली सुने, उनकी पालना ले, भले कितने भी बड़े बड़े धर्म पिताओं के भी ये सौभाग्य नहीं मिलेगा, लास्ट में आएंगे, केवल एक बार थोड़ी दृष्टि मिलेगी बस, इतना बड़ा धर्म स्थापन किया, इतना बड़ा कार्य किया, इतना अत्याचार सहन किया, लेकिन भगवान से मिलने का सौभाग्य उनको भी नहीं, लास्ट में मिलेंगे, हमारी जैसी पालना उनको भी नहीं मिलेगी। हमको तो हर घड़ी हर पल भगवान ही साथ है, बच्चे मुझे साथ रखो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, मुझे जब भी याद करोगे मैं सामने आ जाऊंगा। दुनिया में जो गुरु लोग होते हैं ना, वो अपने चेलों को कई बार कहते हैं कि जब तुम्हारी अंत घड़ी आएगी ना, तो हम आपको सामने खड़े मिलेंगे, हम तुमको धर्मराज के पास नहीं जाने देंगे, ऐसा बोलते हैं वो। लेकिन जब वो गुरु शरीर छोड़ता है तो उनके चेले क्या बोलते हैं, कहते हैं जी हमारा गुरु तो ज्योति ज्योत समा गया, कहते हैं ना ऐसा। अरे भाई, थोड़ी देर पहले तो तुम कह रहे थे वो ज्योति ज्योत समा गया, फिर जब तुम्हारी अंत घड़ी आएगी तो वो ज्योति में से निकल के आएगा क्या? जो समा गया ज्योति ज्योत, वो दोबारा निकल के आएगा ज्योति में से तुमको बचाने के लिए। और कितने सारे चेले हैं, सबको बचाने के लिए बार बार निकलेगा क्या ज्योति में से? एक बार तो समा गया वो, तो उनकी अपनी बातों में कितना विरोधाभास है। ना तो गुरु बेचारा ज्योति ज्योत समाता है, और ना वो तो पुनर्जन्म ले लेता है, अब कौन किसको बचाने आएगा। लेकिन हमारा बाबा, बाबा ने कहा बाबा तो कालों का काल है, बाबा को काल नहीं खा सकता, इसलिए बाबा सब चले जाएंगे, बाबा फिर भी रहेगा, बाबा साथ नहीं छोड़ेगा, साथ निभाएगा। अंत समय की बात छोड़ो, अभी भी कोई भी बात होती है तो बाबा बच्चों के सामने आके खड़ा हो जाता है, मदद करता है। प्रैक्टिकल अनुभव है एक एक बच्चे के, तभी तो हम बाबा के अनुभव ना हो तो ये जीवन, ज्ञानी जीवन आगे बढ़ नहीं सकता, अनुभव के आधार पे ही तो आगे बढ़ रहा है ना। तो बाबा कहते हैं आप जैसा ईश्वरीय पालना में पलने वाला दूसरा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। तो ये हमारा कितना ऊंचा स्वामान। लौकिक दुनिया में माता पिता भी बच्चे को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, लेकिन भगवान जितनी ऊंची नजर से वो भी नहीं देख पाते हैं। ना तो उनके पास इतना ज्ञान भंडार है, और ना ही उनके पास इतना समय है। लौकिक माँ बाप के केवल दो बच्चे, एक बच्चा दो बच्चे आजकल, तो फिर भी उनके पास इतना समय नहीं है, और बाबा के लाखों बच्चे, फिर भी बाबा के पास कितना समय है। एक एक बच्चे के लिए बाबा के पास कितना समय है, एक एक बच्चे की बात सुनने के लिए बाबा के पास कितना समय है। जैसे बाबा हमारे लिए ही है, इसलिए दुनिया में लोग कहते हैं भगवान को और कोई काम नहीं है क्या। बाबा कहता है संगम युग में मेरा प्रोमिनेंट काम ये है, अपने बच्चों से मिलना। तो ऐसा युग फिर कभी आएगा? 5000 साल में यही कीमती से कीमती अक्षण, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए ये बात सोच करके कि हम किसके बच्चे हैं, कौन हमको पढ़ाता है, कौन हमें सिखाता है, कौन, किसने हमारी जिम्मेवारी उठाई है। एक एक बार ऐसे चिंतन करें, संकल्प करें तो कितना नशा चढ़ता। तो प्यारे बाबा ने हम बच्चों को अनमोल खजाना दिया है, उस खजाने को दबा करके नहीं रखना है, छिपा करके नहीं रखना है, उसको यूज करना है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, कई अमीर लोगों के पास बहुत धन होता है पर जमीन में गाड़ देते हैं, तो क्या हुआ, धन जमीन में है और खुद बेचारे कंजूसी से जी रही, तो धन होते हुए भी ना के बराबर है। तो हमारे पास भी इतने स्वमान है, इतने स्वमान है, अगर हम उनको स्मरण नहीं करेंगे तो क्या हो गया, जैसे हमने भी धन को जमीन में गाड़ के रख दिया। पता तो है मैं ऐसा हूं, मुझे पता है मैं ऐसा हूं, पता नहीं, लेकिन स्वरूप बनाना है उसका। स्वरूप बना करके चलेंगे ना तो लोगों को भासना आएगी कि हाँ इसके पास बहुत ज्ञान धन है, ये बहुत ज्ञान में अमीर है, क्योंकि हमारे चेहरे से हमारी अमीरी झलकेगी। और अगर नहीं चिंतन करेंगे तो अमीरी नहीं झलकेगी। तो कल सुबह अमृत वेले कौन सा स्वमान लेकर के जागेंगे, अभी से अपना स्वमान चिंतन में ले आना, सोते समय उसी का चिंतन करना, और अमृत वेले जब उठेंगे ना तो उसी स्वमान में उठना। कोई ना कोई स्वमान आप पे ही चुन लीजिए और नहीं तो सबसे अच्छा स्वमान है मधुबन में आने के बाद अनुभव कीजिए। दो तीन मैं बता देती हूँ जो पसंद आए। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हूँ, मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं बाप दादा का दिल तख्त नशीन हूँ, मेरे मस्तक पर विजय का तिलक है, मैं विजयी आत्मा हूँ। कोई भी जो आपको पसंद आए उस एक स्वमान को लेके कल आप अमृत वेले योगाभ्यास करेंगे। ओम शांति।